संबंध। अब आगे के श्लोक में पराभक्ति का फल बताते हैं। भक्त्या माम विजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूं और जो हूं इसको तत्व से जान लेता है। फिर मुझे तत्व से जानने के बाद तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। व्याख्या, भक्त्या माम अभिजानाति। जब परमात्म तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, फिर उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता, इसलिए उसको प्रेमस्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था होने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर मैं ब्रह्म हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकार हूं, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रहता है। यह अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है। कारण कि यह अहम भाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह अहम भाव मिटता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। इस अहम भाव के सर्वथा मिटने से ही तत्व का वास्तविक बोध होता है। यावान, सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी कि मुझमें जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने सातवें अध्याय के अंत में कही कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं और अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम कृष्ण शिव गणेश शक्ति सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना, यही पराभक्ति से यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। यश्चास्मि तत्वतः है, वही परमात्मा अनेक रूपों में अनेक आकृतियों में अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं और वही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस प्रकार मैं जो हूँ उसे तत्व से जान लेता है। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव था वो सर्वथा मिट जाता है। तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानपना था वो सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है और इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। विशेष बात, जीव का परमात्मा में प्रेम स्वतः है, परंतु जब ये जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है। ये आकर्षण ही वासना, स्प्रिया, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा जाता है। इस वासना आदि का जो विषय है वे सब प्रकृति जन्य पदार्थ है जो क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है, जबकि ये जीवात्मा स्वयं नित्य और अपरिवर्तनशील है। परंतु ऐसी वास्तविकता होने पर भी प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से यह परिवर्तनशील में आकृष्ट हो जाता है। इससे इसको मिलता तो कुछ नहीं है पर कुछ मिलेगा। इस भ्रम वासना के कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है। इससे छूटने के लिए भगवान ने योग बताया है। वह योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव करा देता है। गीता में मुख्य रूप से तीन योग कहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में है। कर्म योग में उसको कर्तव्य रति कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत है 18:45। कर्म योग में यह कर्तव्य रति अंत में आत्मरति में बदल जाती है, 2:55 और 3:17। और जिस कर्मयोगी में भक्ति के संस्कार है उसकी यह रति भगवत रति में परिणत हो जाती है। ज्ञान योग में उसी प्रेम को आत्मरति कहते हैं। योऽन्तः सुखो अंतरा रामस तथा अंतर ज्योतिरेवच 5:24। और भक्ति योग में उसी प्रेम को भगवत रति कहते हैं, क्योंकि वह रति भगवान में होती है और ये रति भगवान में रति या प्रीता प्रकट होती है अपनेपन से। यह एक नियम है कि अपनी चीज स्वतः प्रिय लगती है। परमात्मा के साथ जीव का अनादि काल से स्वतः सिद्ध संबंध है, अतः अपनापन प्रकट होते ही भगवान स्वतः प्यारे लगते हैं। और इस प्रियता में कभी कमी नहीं आती, यह प्रियता कभी क्षीण नहीं होती, यह समाप्त नहीं होती, यह अलौकिक और विलक्षण है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये 10:9 में। इस प्रकार इन तीनों योगों में रति होने पर भी गीता में भगवत रति की विशेष रूप से महिमा गाई गई है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से भी योगी माने समता वाला श्रेष्ठ है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्योपि मतोधिक है, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी। 6:46। तात्पर्य यह है कि जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान संपादन करने पर और यज्ञ दान तीर्थ आदि के बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है, पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सभी योगियों में भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम समे युक्त तमो मत है। 6:47। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सांख्य योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। उसी समग्र रूप का वर्णन यहाँ यावान पद से हुआ था। ये यावान को ही गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वम ऐसा कहा है। इस प्रकरण के आरंभ में अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, यह कहने की प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यान योग के परायण होने से वह वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य से अहंकार आदि का त्याग करके ममता रहित होकर शांत होता है, तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूत अवस्था होने पर संसार के संबंध से जो राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्व होते थे वे सर्वथा मिट जाते हैं और वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। सम होने पर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है। इस प्रीति से परमात्मा के समग्र रूप का बोध हो जाता है। बोध होते ही उस तत्व में प्रवेश हो जाता है। विशते तदनंतरम। अनन्य भक्ति से तो मनुष्य भगवान को तत्व से जान सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके दर्शन भी कर सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप है 11:54। परंतु सांख्य योगी भगवान के तत्व को जानकर उसमें प्रविष्ट तो होता है पर भगवान उसको दर्शन देने में बाध्य नहीं होते, कारण कि उसकी साधना पहले से ही विवेक प्रधान रही है, इसलिए उसको दर्शन की इच्छा नहीं होती। दर्शन न होने पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कमी माननी नहीं चाहिए। यह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेम की प्राप्ति है। इसी प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमान कहा है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। इस प्रेम में सर्वथा पूर्णता हो जाती है। उसके लिए करना जानना मानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए न करने का राग रहता है, न जानने की जिज्ञासा होती है, न जीने की आशा रहती है, न मरने का भय लगता है और न पाने का लालच रहता है। जब तक भगवान में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता तब तक ब्रह्म भूत अवस्था में भी मैं ब्रह्म हूँ ये सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक लेश मात्र भी अहंकार रहता है तब तक परिच्छिन्नता का अभाव नहीं होता। परंतु मैं ब्रह्म हूँ ये सूक्ष्म अहम भाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता जब तक उसमें प्रकृति जन्य गुणों का संग नहीं होता, क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु गीता 13:21। उदाहरणार्थ गाढ़ नींद से जगने पर साधारण मनुष्य को सबसे पहले यह अनुभव होता है कि मैं हूँ। ऐसा अनुभव होते ही जब नाम रूप देश काल आदि के साथ स्वयं का संबंध जुड़ जाता है तब मैं हूँ यह अहम भाव शुभ अशुभ कर्मों का कारण बन जाता है जिससे जन्म मरण का चक्र चलता है। परंतु जो ऊंचे दर्जे का साधक होता है जिसकी निरंतर ब्रह्म भूत अवस्था रहती है उसके सात्विक ज्ञान में सब जगह ही अपने स्वरूप का बोध रहता है। परंतु जब तक साधक का सत्वगुण के साथ संबंध रहता है तब तक नींद से जागने पर तत्काल मैं ब्रह्म हूँ अथवा सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसी वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींद में यह वृत्ति छूट गई थी, मानो उसकी भूल हो गई थी और अब पीछे उस तत्व की जागृति हो गई है, स्मृति आ गई है। गुणातीत होने पर गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तत्पश्चात विस्मृति और स्मृति ऐसी दो अवस्थाएं नहीं होती। वहां यह नहीं होता कि नींद में भूलोगे अब स्मृति आ गई, ऐसा नहीं होता। प्रत्युत नींद तो केवल अंतःकरण में आई थी, अपने में नहीं। अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहा, ऐसा अनुभव रहता है। तात्पर्य यह है कि निद्रा का आना और उससे जगना ये दोनों प्रकृति में ही है, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्था को 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, प्रकाश अर्थात माने नींद से जागना और मोह माने नींद का आना, इन दोनों ही में गुणातीत पुरुष के किंचन मात्र भी राग द्वेष नहीं होते। परिशिष्ट भाव, मैं जितना हूं और जो हूं यावान यस्यास्मि, यह बात सगुण की ही है, क्योंकि यावान तावान निर्गुण में हो ही नहीं सकता, ये तो सगुण में ही हो सकता है। चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है, यावानम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। श्रीमद् भागवत 2 स्कंद 9वां अध्याय 31वां श्लोक। मैं जितना हूं, जिस भाव वाला हूं, जिन रूप गुण और कर्मों वाला हूं, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाए। यावान यशास्मि का वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में, सादि भूतादि दैवमाम सादि यज्ञं च मे ये विदुः पदों में किया था। इससे सगुण की विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है। ज्ञान मार्ग में चलने वाले को जब ज्ञानोत्तर काल में भक्ति प्राप्त होती है, तब उसमें तत्व से जानना और प्रविष्ट होना ये दो बातें ही होती हैं, दर्शन नहीं होते। उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की इच्छा उनमें नहीं होती। परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग से चलने वाले को तत्व से जानने की, उसमें प्रविष्ट होने की और इसके साथ भगवान के दर्शन की इच्छा रहती है। इसलिए वह तत्व से जानता भी है, भगवान में प्रवेश भी करता है और भगवान के दर्शन भी होते हैं। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप, 11:54। इसलिए ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम की बात तो आती है, पर दर्शन की बात नहीं आती। जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति दरवाजे में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर एक हो जाते हैं, अर्थात उनमें अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। वहां इस अवस्था में कोई मतभेद नहीं रहता। प्रेम की दो अवस्था होती है। पहली, कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। दूसरा, कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला के लिए दो हो जाते हैं। यहां पहली अवस्था को बताने के लिए विशते पद आया है।